ॐ नमः भगवते वासुदेवाय। ॐ नमः भगवते वासुदेवाय। ॐ नमः भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये नष्टत्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नष्टके कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम स्कंद 8 अध्याय 16 श्लोक संख्या 6। अपि पातीथयो भेत्य कुटुम्भासक्तया त्वया गृहात् पूजित जाता प्रत्युत्थानेन वा क्वचित्। कृष्ण कृपा स्मृति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। शब्दार्थ मेरे पीछे दोहराइए। अपि क्या बा या तो अतिथय मेहमान आवेत्य घर के पास आकर कुटुंब आसक्तया जो परिवार वालों के प्रति अत्यधिक आसक्त हैं त्वया तुम्हारे द्वारा गृहां घर से अपूजिता ठीक से सत्कार ना किया जाने पर याता चले गए प्रतिष्ठानेन खड़े होकर अभिवादन करना वा अथवा कोचिन कभी कभी। अनुवाद मेरे पीछे तो रहिए। मुझे आश्चर्य है कि कहीं तुम अपने परिवार के सदस्यों के प्रति अत्यधिक आसक्त होने के कारण अचानक आए हुए अतिथियों का ठीक से स्वागत नहीं कर पाए और वे बिना सत्कार के ही आपस चले गए। तात्पर्य गृहस्थ का कर्तव्य है कि वह अतिथियों का सत्कार करे। गृहस्थ का कर्तव्य है कि वह अतिथियों का सत्कार करे भले ही वे शत्रु ही क्यों ना हो। जब कोई अतिथि घर पर आए तो खड़े होकर उसका सत्कार किया जाए और बैठने के लिए उसे आसन प्रदान किया जाए। यह आदेश है गृहे शत्रुम अपि प्राप्तं विश्वस्तं अकुतो भयम्। यदि किसी के घर उसका शत्रु भी आए तो उसका इस प्रकार सत्कार किया जाए कि वह यह भूल जाए कि अतिथेय उसका शत्रु है। अपनी स्थिति के अनुसार मनुष्य को चाहिए कि घर आए हुए अतिथि का उचित सत्कार करे। कम से कम उसे बैठने के लिए आसन तथा पीने के लिए एक गिलास पानी अवश्य देना दिया जाए, जिससे अतिथि अप्रसन्न ना हो। कश्यप मुनि ने अतिथि से पूछा कि कहीं ऐसे अतिथियों का निरादर तो नहीं हुआ। अतिथि शब्द उस व्यक्ति का सूचक है जो बिना बुलाए आए। श्रील प्रभुपाद की जय। ओम ज्ञान जमिरंदस्य ज्ञानांजन सर्वकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सोपदान्तिकं। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पश्यत्यदेशधारिणे। नमो महापदन्नाय कृष्ण प्रेमा प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरदिशे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यः कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। गुरवे गौरचंद्राय श्रीराधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। भूतैर्महद्भीयमा पुरा विभो निर्माय सेते तदमो सपुरुष भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकं षोडं कृषिष्टं भगवान् वचंसि मे। हरे कृष्ण। अपिबा अतिथयो आभित्य कुटुंबासक्तया त्वया गृहात् अपूजिता जातः प्रतिथाने नवा क्वचित्। ये कश्यप जी दिति से इस प्रकार पूछ रहे हैं कि जब बलि महाराज अपने गुरु शुक्राचार्य से दिव्य शंख और अपने पितामह प्रह्लाद जी से एक दिव्य माला प्राप्त करके जब देवता पर हमला की और देवता लोग असुरों के फायदे से वह स्वर्ग लोग छोड़ करके भाग गए और ऐसे स्थिति में बृहस्पति जी इंद्र के पास आकर के कहें कि तुम्हारा ये जो दयनीय दशा हुई है इसके कारण है कि तुम ब्राह्मण के प्रति गुरु के प्रति अनादर की। लेकिन भृगुवंशी ब्राह्मण की कृपा से बलि को असीमित अल्प प्राप्त हुआ है और अभी उनकी समय अनुकूल है और तुम किसी प्रकार उनको जीत नहीं सकते, इसलिए तुम लोग प्रतीक्षा करो समय अनुकूल आने के लिए। जब वह उन ब्राह्मण के प्रति जिनकी कृपा से उनको ऐसे शक्ति प्राप्त हुई है जो कि भगवान को छोड़कर के अब सभी देवताओं को पराजित करने वाले शक्ति प्राप्त हुई थी, तो वही ब्राह्मण के प्रति अपराध का निरादर करने के कारण फिर उनकी शक्ति घट जाएगी। तो इसी प्रकार बृहस्पति जी इंद्र को सलाह दी। और यहां पर देवताओं की माता अदिति ने अपने पुत्रों को खो करके व पुत्र लोगों की शोक से संतप्त होकर वो सोच रही थी कि किस प्रकार संतानहीन व पुत्रहीन परिवार आनंद प्रदान कर सकता है, इस प्रकार सोच में थी। तो उस समय कश्यप जी घर में नहीं थे, तो कश्यप जी तपस्या करने के लिए जंगल में गए हुए थे। जब उन्होंने तपस्या से लौट करके आए व उनकी समाधि टूटी, तो जब घर को वापस आए तो पहले पत्नी के चेहरा को देखे किस प्रकार है, म्लान बदना, बहुत दुख और शोक से म्लान है, चिंतित है। तो उनकी इस प्रकार चेहरा को देखकर, खासकर भी परिवार के संबंध तभी रहता है जब हम एक दूसरे की मनोभाव को समझें। और मन को कैसे समझना है, फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड, चेहरा को देखकर के पता लगाना चाहिए। इतना तो हम अभी के होना चाहिए, चाहे समाज में वा परिवार में वा अपने रिश्तेदार से, तो व्यवहार इस प्रकार करना चाहिए। पहला, उनके मन में किस प्रकार विचार चल रहा है तो आप इसको कम से कम समझना चाहिए, फीलिंग विथ डीलिंग। तो यदि भावना नहीं है, हम वास्तविक ठीक तरह से हम डील नहीं कर सकते। तो कश्यप जी पत्नी की इस दशा को देखकर के पूछ रहे हैं, क्या तुम अपने गृहस्थ धर्म को ठीक तरह से निभाए हैं? चौथा श्लोक से लेकर के लगभग 7 श्लोक 10 श्लोक तक, 7 श्लोक में केवल प्रश्न पूछ रहे हैं पत्नी की मनोभावना को जानने के लिए कि आप अपने गृहस्थ धर्म को ठीक तरह से निभाए हैं और धर्म अर्थ और काम, ये जो 3 पुरुषार्थ ये गृहस्थ के लिए बहुत आवश्यक है, उसको भली भांति निभाना चाहिए। क्या आप ये 3 पुरुषार्थ को ठीक तरह से निभाए हैं? फिर प्रश्न कर रहे हैं कि क्या आप अतिथियों को ठीक से स्वागत नहीं किए हैं? जो अतिथि आपकी घर के पास आए हुए हैं, अपि अतिथय आभेत्य, क्या भूल गए इन अतिथियों को स्वागत करना? तो मानव दीदी करे कि हाँ मेरी गलती हो गई है। कहते हाँ ये गलती हो सकती है कि तुम अपने परिवार के प्रति बहुत आसक्त हो, जो कुटुंब आसक्तया, कुटुंब का मतलब होता है बड़े परिवार जिनमें सदस्य बहुत ज्यादा है, तो अपने परिवार के सदस्यों को लेकर के पा जिन परिवार में बहुत सुख है, संपत्ति है, और इस सुख संपत्ति के मध में दु दूसरे को ऐसे ऊपर नजर करके देखता है। यह है कुटुंब आसक्तया, जो व्यक्ति घर परिवार के प्रति आसक्त है वो देखता है ईस्ट या वेस्ट, माई होम इज द बेस्ट। वो ये हमेशा ही सोचता है मेरी परिवार बहुत अच्छा है, मैं तो सुखी हूं, मेरे बेटा बेटी तो बहुत शिक्षित हैं और मैं तो अरिस्टोक्रेट फैमिली से हूं, मुझे किसकी परवाह नहीं है। तो ये जो सिम्टम्स हैं कुटुंब आसक्तया, तो कश्यप जी कह रहे हैं कि तो या कुटुंब आसक्तया, परिवार के प्रति आसक्त होने के कारण तुम क्या किए ना, गृहात अतिथि आवेद्य अपूजिता जाता, घर में आए हुए अतिथियों की तुम सत्कार नहीं किए, अपूजिता पूजा नहीं कर पाए। तो मान लो दीदी कह रहे कि मुझे पूजा करने के टाइम कहां है, घर परिवार तो फंसा हुआ हूं। तो कश्यप जी कह रहे हैं कि कम से कम तुम खड़ी हो जाती, खड़े होकर के प्रणाम कर लेते हैं, प्रत्युत्थान कुछ ऐसे भी कर सकते हैं। जो अतिथि घर में आते हैं तो कम से कम स्वागत करने की परिपाटी क्या है, भागवत में अनेक स्थान में है। अतः पहला है कि यदि हम अतिथि को देखते हैं, हाँ अतिथि कौन है, जो बिना फोन किए आए हैं, अर्थात उनकी तिथि नहीं है कि इस डेट में पहुंचूंगा, इस टाइम में पहुंचूंगा, मेरे लिए प्रसाद अरेंज करके रखो, मैं फिर इस टाइम में जाऊंगा, नहीं। अतिथि वो है जो बिना बुलाए बिना बोले अपने आप पहुंच गए, जदृच्छया स्वतः अपने आप, तो वो कहते अतिथि। तो ऐसे अतिथि जब आते हैं तो दूर से देख करके उनको स्वागत करना चाहिए, किस प्रकार, पहले मधुर भाषण के द्वारा, आइए आइए महात्मा जी पधारिए, हमारे मित्र मां गुरुजन पंडित जी साधु जी कहा करके उनको स्वागत करना चाहिए, आइए पधारिए। फिर दूसरा है हम कह सकते हैं आज की आपके चरण कमल हमारे घर में पड़ने से ना आज हमारी घर पवित्र हो गया, कुल पवित्र हो गया। जैसे बामन देव पहुंच गए बड़े के पास, हाँ बड़े महाराज विद्या बड़े कितनी अच्छी सुंदर मधुर भाषण से बामन देव को स्वागत किया, इस प्रकार हमारे कुल पावन हो गया, पितर लोग तर गए। ये नहीं कर पाए तो अतिथि आगे, मतलब आप देखे नहीं उनको, पहुंच गए अतिथि घर में पहुंच गए, तो तुरंत क्या करना चाहिए, कम से कम बैठने के लिए आसन दे देना चाहिए। नहीं मैं भूल गया, दूसरा है यदि आपके पास संपत्ति है धन है तो उस अतिथि को पहला धूप दीप अगुर चंदन पुष्पमाला और बाद में फूल देना चाहिए। चरण कमल की फट्ठा ना करना चाहिए। यदि बड़े महात्मा हैं, गुरुजन हैं, साधन पुरुष हैं, तो उस चरण दब को प्राप्त करके परिवार के सदस्य के सर पर छिड़काना चाहिए। आजकल तो कोई पानी भी लोटा भी नहीं पहुंचाते हैं, अतिथि खो जा करके बाथरूम में पैर धो लेते हैं, नहीं तो बाहर देते आउटसाइड में नल है तो खोल करके धो के जाते हैं, क्या करें, अतिथि सत्कार का ऐसी दशा हो गया। जिस देश में अतिथियों को देवता कहा जाता है, अतिथि देव भव, आइए महात्मा जी पधारिए, तो फिर समय ऐसे हो गया वो अतिथियों को सिर्फ बाहर डोर पर लिखा होता था सुस्वागतम, और आजकल अतिथि को स्वागत करते हैं बी वेयर्स टू डक, कुत्तों के प्रति सावधान। तो यही से अतिथि को स्वागत होता है। कम से कम प्रणाम करना चाहिए, ये तो शिष्टाचार है। हम साउथ इंडिया में गए थे, चेन्नई में 99 में, एक भक्त था परम पूज्य जयपतिराम महाराज के, क्या सेवा भाव दास, तो उनके घर में गए तो पहले उन्होंने क्या किए, सभी भक्तों का चरण प्रक्षालन करने लगे, फिर चरण पर ही फूल छिड़कने लगे। बहुत गरीब था परंतु कल्चर है। बॉम्बे में उस पद यात्रा जब पहुंचा तो कौन है परम पूज्य राधानाथ महाराज, एक धनी व्यक्ति है, श्रीनाथ प्रभु ने दूसरे, हाँ कृष्णचंद्र मफतलाल जी, हाँ उनके घर में गए थे। तो वो तो शिव जी की भी पूजा करते हैं, शिवलिंग भी रखे हैं सोना की। तो हम जब पहुंचे रथ के साथ, तो ऐसे 21 लड़कियां, जवान लड़कियां, एक कलर के ड्रेस पहने हुए थे और सर पर सब कलश लेकर के खड़े थे स्वागत करने के लिए। कलश के ऊपर था आम की पत्ता, उनके ट्रेडिशन। फिर शंख ध्वनि किए, उड़ीसा में शंख ध्वनि के साथ भी हुल ध्वनि भी करते हैं, ये भी स्वागत करने का परिपाटी। तो फिर नारियल पानी में चरण प्रक्षालन करने के लिए प्रयास किए, लेकिन भक्त लोग तो लिए नहीं, पकड़ लिए कि खड़ा हुआ लगो जो खड़ा पहना था, कहीं ये बड़ी महाराज है आई, अब वो चल नहीं सकता था, दौड़ नहीं सकता था, सब लोग भाग गए, लेकिन खड़ा वाला पकड़े में आ गए। तो उनकी चरण प्रक्षालन कर लिए। तो अतिथियों को इस प्रकार कम से कम एकदम एटलीस्ट क्या करना चाहिए, प्रभुपाद कहते हैं बैठने के लिए आसन देना चाहिए और पीने के लिए एक ग्लास पानी देना चाहिए। यदि घर में कुछ है नहीं भोजन कराने के लिए, तो बैठने के लिए आसन और पानी दे दें। और शायद मुझे लग रहा है कि चौथा स्कंद में पृथ्वी महाराज को चार कुमार ने बता दें, मुझे स्मरण नहीं है, सबरे बच्चे नहीं कर पाए। वो कह रहे कि यदि वो भी आसन भी नहीं है आपका घर में, इतनी गरीब है, तो कम से कम जो वस्त्र पहने हैं बा एक्स्ट्रा वस्त्र, उस वस्त्र से झाड़ करके जमीन को धूल हटा करके कहना चाहिए बैठिए, इतना करना चाहिए और हाथ जोड़ करके प्रणाम करना चाहिए। यह है अतिथि सत्कार का परिपाटी। तो कम से कम यदि घर में कोई आ गए अतिथि, तो कश्यप जी कह रहे कि एकदम मिनिमम स्टैंडर्ड है प्रत्युत्थाने वा प्रत्युत्थानेन, खड़े हो जाए हाथ जोड़ करके। यदि नाम में ही नहीं जानते हैं, किसी प्रकार उनके वेशभूषा को देखकर कि साधु शब्द से उनको स्वागत करना चाहिए, महाराज प्रणाम कृपा रखिए। तो कश्यप जी कह रहे कि हाँ ये शायद नहीं की, कुछ इतनी से लगता है। श्रीधर स्वामी कहते हैं क्वचित बा अतिथय आभेत्य कुटुंब असत्या त्वया प्रतिधान अपूजिता गृहात जाता। मतलब घर से चल गए, कैसे घर है, ये घर नहीं है, स्मशान है। जब कृष्ण जाते ना किसी घर में माखन चोरी करने के लिए, तो उनको तो कोई बुलाता नहीं था, मन से इच्छा रखते थे, तो बिना नोटिस के पहुंच जाते। तो कृष्ण सोचते थे अरे भाई मैं अतिथि हूं, स्वागत भी नहीं किए, बल्कि मैं खोद ले लिया और तुम हमको पकड़ते हो, अतिथि सत्कार नहीं जानते हो। अगर यदि किसी के घर में कुछ खाने पीने के लिए नहीं मिलता, कहता है तुम्हारी घर में ना घर नहीं है, ये तो भूत की कोठी है, स्मशान है, कुछ भी नहीं रखते हो खाने पीने के लिए, ऐसे कह कर चल जाते। बड़ा अतिथि समझते थे हम अपने को, कहते स्वागत नहीं करते हैं आप लोग, और खुद आकर के मैं लेता हूं, आप लोग धन्यवाद देना चाहिए, उल्टा मेरे ऊपर हमला करते हो और मुझे डराते हो। कहते ऐसे स्थिति में अतिथि सब तक बेकार है, चलो यहां हम नहीं जाएंगे, इसे छोड़ के चल जाते हैं। तो एक बार की एक घटना है, रामानुज आचार्य तीर्थ यात्रा कर रहे थे कुछ शिष्यों के साथ। तो रास्ते में उनकी शिष्यों को बहुत भूख लगा और रामानुज आचार्य सोच रहे थे कि रास्ता में कोई यदि वैष्णव भक्त हैं तो उनके घर में हम प्रसाद पा सकते हैं। तो अपने एक शिष्य को भेजे कि इस स्थान में मेरे एक शिष्य रहता है, बहुत धनी व्यक्ति है, तो आप जाओ उनको आप सूचना दो। तो शिष्य ने गया और उनके गुरु भाइयों को सूचना दिया कैसे गुरु महाराज जी आए, तो बहुत खुश हो गया। तो उन्होंने उनसे पूछा गुरु जी क्या क्या खाएंगे बताइए, प्रसाद क्या पाए। तो उन्होंने कहा कि आप तो जानते हैं, जैसे हम पहले पूछ लेते हैं ना मेन्यू क्या है, तो बता के आ गए। तो आकर के रामानुज आचार्य से कहा कि गुरु महाराज ऐसे में सूचना दे के आए और उन्होंने इतने समय तक हमारे प्रसाद तैयार हो जाएगा, पहुंचना चाहिए। तो रामानुज आचार्य उनसे पूछे कि जब आप ये सूचना दिए तो उनका कैसे मनोभाव था, कैसे मनोदशा था। तो बहुत खुश हो गया, आपके नाम सुनते ही ना बहुत खुश हो गए। अच्छा, तो फिर रामानुज आचार्य पूछे आपको कैसे स्वागत किया, आपसे कुछ कहा। तो नहीं गुरु महाराज, आपके नाम सुनते ही इतनी वो भाव विवल हो गया ना, तो मैं भूल गया कि आप कैसे हैं, कहां से आए हैं, कुछ पूछा नहीं था। तो रामानुज आचार्य कहे ठीक है। तो और एक शिष्य को कहे कि जाओ तुम सूचना दे दो कि आज उनके घर में मैं प्रसाद पाने के लिए नहीं जाऊंगा। तो फिर एक बहुत गरीब भक्त था कुछ दूरी पर, तो रामानुज आचार्य चलते रहे वहां पहुंच करके उनके शिष्य को भेजे, उनको बोल के आओ कि आज उनके घर में हम प्रसाद पाए। और उतना नहीं, रामानुज आचार्य स्वयं चलने लगे उनके घर बिना सूचना की। और उस समय वो जो भक्त था बहुत गरीब था, घर में यहां तक एक कण भी चावल नहीं है, भिक्षा करके जो लाता था उससे अपने परिवार चलाता था, इतनी गरीब था। तो वो भक्त भिक्षा करने के लिए बाहर चल गया था और उनकी पत्नी नहा रही थी। कहां पर नहा रही थी, दरवाजा बंद करके। इस समय तो हम बाथरूम ये करते हैं कि छोटा से एक घर है जहां पर, खास करके आप दक्षिण भारत में जाएंगे, एक पत्थर रहता है कपड़ा धोने के लिए, और वहीं पर जो घड़ा है पीतल की घड़ा रखते हैं और वो पानी से नहा लेते हैं। तो घड़ा से पानी डाल करके एक एक लोटा पर नहा रही थी, लेकिन उनके पास एक ही वस्त्र था पहनने के लिए और वो वस्त्र को वो धो करके बाहर सुखाई थी स्नान करने के बाद पहनने के लिए। और जब रामानुज आचार्य पहुंच गए और आवाज दिए तो गुरुजी की आवाज को पहचान गए और अंदर से कहने लगे कि मैं निर्वस्त्र हूँ, निर्वस्त्र हूँ। तो रामानुज आचार्य ये बात सुन करके अपने दुपट्टा को गिराए और वो जब बाहर आई वो दुपट्टा पहन करके देखे कि घर में कुछ भी है नहीं। तो पहले तो उनको सत्कार करके बैठाए, आसन दिए, फिर क्योंकि उनको पता चले कि गुरु महाराज और शिष्यों भी बहुत भूखे हैं, तो भोजन के प्रबंध करने के लिए वो पड़ोस के घर में गए, कोई भी कुछ भी नहीं दिया, उधार नहीं दिए। फिर आखिर में एक ऐसे लंपट दुकानदार के पास वो पहुंच दिए हैं, और इस प्रकार एक शर्त से वो दिए कि मुझे तुमसे कुछ पैसा का जरूरत नहीं है, मैं दूंगा सारे सामान, लेकिन तुम्हारे सुंदरता को मैं एक दिन के लिए भोग करूंगा, परंतु अतिथि सेवा के लिए उन्होंने एग्री हो गई। पति से परमिशन भी नहीं ली और सब कुछ अरेंजमेंट करके गुरु के साथ उनकी सशिष्यों को प्रसाद पावे। फिर जब उनके पति लौट करके आए, देखे सब प्रसाद पा रहे हैं और पूछे, तुम कैसे अरेंजमेंट किए, कौन दिया सबसे? तो अपने पति को एकांत में बताया सारी घटना को। तो उनकी पत्नी क्या कहे, दूसरे यदि कोई होता है कि जनरल हम क्या कहते हैं, हाँ तुम उसे पूछे नहीं कम से कम, और आगे तो कोई कोई बात हो जाता है, परंतु उन्होंने कहा बहुत अच्छा की, तुम्हारे जीवन धन्य है और ऐसी स्त्री मुझे प्राप्त हो गई जो गुरु और वैष्णव की संतुष्टि के लिए सब कुछ निछावर कर सकता है, अपने जीवन तक धन तक नहीं था। तो फिर इसके बाद रामानुजाचार्य ने जब ये बात को सुने, हाँ उनकी ये गुप्त रूप में बात कर रहे थे, परंतु रामानुजाचार्य सुन पाए बात को, तो प्रसाद की बात उस स्त्री को बुलाए रामानुजाचार्य, और उन्होंने कहा कि ये जो उचिष्ट है मेरे उचिष्ट लिख जाए और उस व्यवसाय को दे देना प्रसाद के। और जब उनकी पत्नी रामानुजाचार्य की उचिष्ट लेकर के उस रात्रि को पहुंचे और कहे कि ये प्रसाद लाए हैं, प्रसाद पाइए और मैं आपकी मनोकामना को पूर्ति करूंगा, और फिर उनकी पति ने स्वयं उनके साथ भी गए थे उनको छोड़ने के लिए कि रात्रि के अंधकार में डर नहीं जाए। और जब ये उस व्यवसाय को मालूम चला कि पतिदेव उनके पतिदेव बाहर खड़े हैं और रामानुजाचार्य के प्रसाद को प्राप्त करके उनके सारी मन की महिला शुद्ध हो गई, कि जब तक किसी वैष्णव की इस प्रकार कृपा प्राप्त नहीं होती है, चाहे चरण रज के रूप में वा उचिष्ट के रूप में, तीन चीज है ना साधना की बहुत बड़ा शक्ति है, क्या है, भक्त पद जल, भक्त पद धूलि और भक्त भुक्त अवशेष, ये तीन ये महाशक्ति प्रदान करता है, मन की मैल को मिटा देता है। और वो व्यवसाय क्या देखा, उस स्त्री के रूप में नहीं देखा, वो देखा कि साक्षात लक्ष्मी जी और नारायण साथ है, और तुरंत वो व्यवसाय ने उनके चरणों में गिर पड़े, उनको स्तुति करने लगे। तो ये था अतिथि सत्कार। जगन्नाथपुरी में रघु अरखित, आप लोग सुने होंगे, जगन्नाथ के बहुत बड़े भक्त थे, बहुत धनी तो थे लेकिन शत्रु लोग ने उनसे धन छीन लिए, उनके पिताजी की सरलता को देख करके सारे धन बर्बाद हो गए। तो आखिरी में रघु अरखित जगन्नाथपुरी चल गए, लेकिन उनकी विवाह पहले से तय हो गया था, इसे लंबी कथा है। तो रघु अरखित को उनकी जो ससुराल वाले हैं, जब पहुंच गया उन्होंने एक पत्र भेजा था उनकी पत्नी, अगर यदि आप नहीं आएंगे तो मेरे विवाह दूसरे के साथ हो जाएगा और मैं ऐसे जीवन रख कर मेरा क्या लाभ है, मैं जहर पी लूं, नहीं तो मैं आत्महत्या कर लूं, नहीं तो आग में प्रवेश कर जाऊं। तो वो पत्र को रघुनाथ जगन्नाथ के चरण कमल में रख दिए और इतने थके हुए थे, जगन्नाथ जी की स्तुति करते करते वहीं दरवाजे के पास सो गए। और जब सवेरे अपने को कहां देखें, उस स्थान में उनके ससुराल बहुत दूर था, तो वहां उनके ससुराल लोग देख करके आश्चर्य हो गए। उनके तो विवाह जिस दिन था उसी दिन रघु और कित पहुंच गया, लेकिन उनके विवाह और एक धनी व्यक्ति के साथ तय हो चुका है। तो तुरंत वो लोग ऐसे मीटिंग किए और उनको मारने के लिए व्यवस्था की, केक में जहर डाल करके दे दिया। परंतु उनकी पत्नी ने उस केक के अंदर एक पत्र लिखा था छोटे से कि इसमें जहर मिला हुआ है, आपको सेवन नहीं करना। परंतु वो पहले तो जगन्नाथ को अर्पित कर चुके हैं, कहते जगन्नाथ जी जहर खाए तो उनकी प्रसाद को मैं कैसे, उनको जहर दे करके मैं अमृत पीऊं। तो उन्होंने भी उस केक को खा लिया और जहर का तो प्रभाव हुआ। तो ये लोग बहुत खुश हो गए, उनका डेड बॉडी को बांध करके बाहर फेंक दिए कि पता ना चले। ना बांध करके रख दिए, एक घर में ताला लगा करके रख दिए और यहाँ वो सोचे कि विवाह संपन्न हो जाए फिर बाद में हम उसके डेड बॉडी को कहाँ गाड़ देंगे। और उस समय उनकी जो पत्नी है जगन्नाथ जी से इतनी दयनीयतापूर्ण प्रार्थना कर रही थी, तो जगन्नाथ जी उनकी प्रार्थना सुन करके तो रघु अरखित के सामने प्रकट हुए और उनके शरीर को स्पर्श करते ही रघु अरखित का फिर जीवन आ गया, प्राण आ गया। तो फिर रघु अरखित किस प्रकार मृत शरीर से फिर प्राण आ जाने को देख करके उनकी ससुराल वाले बहुत हैरान हो गए, ये कैसे हुआ। फिर बाद में सब लोग सोचे कि हम अपने को बचाना चाहिए, तो उनकी पत्नी पद्मावती को देख करके कुछ दहेज दे करके उनको फेंस दी कि तुम यहाँ से चल जाओ। तो जगन्नाथपुरी में जब वो पहुंचे तो जितना धन था वो सारी धन और उनकी पत्नी के गहना को बेच करके अतिथि सेवा करने लगे। प्रतिदिन आते थे सब ब्राह्मण अतिथि भोजन करने के लिए, कहीं भी जगन्नाथपुरी में कोई पहुंच जाए कहते थे चल जाओ उनके घर में वही खिलाता है। तो फिर आखिर ऐसे ही तीन ब्राह्मण आकर के पहुंच गए, हाँ उनके घर में कुछ भी नहीं था खिलाने के लिए। इसी प्रकार जैसे रामानुजी आचार्य के जो गरीब शिष्य था इस प्रकार उनकी स्थिति था, वो ला करके अतिथि सेवा की। और एक स्मृति शास्त्र में कहा गया है यदि अतिथि प्रसन्न हो जाते हैं तो उनकी सारी समृद्धि प्राप्त होता है और ऐश्वर्य के साथ वो वैकुंठ में नित्य निवास करता है अतिथि प्रसन्न। इसलिए वैदिक शास्त्र में कहा जाता है अतिथि देव भव, सारे देवताओं की आशीष भी उनको प्राप्त होता है। अतिथि सत्कार करने की कैसे मूड होना चाहिए ये श्रीमद् भागवतम में श्रुतदेव और बहुलाश्रय के प्रसंग में है। तो जनकपुर की कथा है, ऐसे जनकपुरी तो बहुत प्रसिद्ध है जनक महाराज के लिए, क्योंकि उन्होंने विश्वामित्र और राम और लक्ष्मण की कैसे सत्कार किए थे जानते हैं, राजा होकर के। तो इस प्रसंग के आप लोग सब जानते हैं उनकी आंख के आंसुओं से राम और लक्ष्मण की चरण को प्रक्षालन किए जनक जी, क्योंकि साक्षात ब्रह्मा हमारे घर में पदार्पण किए। इसी प्रकार एक प्रसंग है जो जनक के पहले एक ब्राह्मण और एक राजा थे, तो राजा का नाम था बहुड़ासु। वो बहुत संपन्न थे, तो राजा तो हैं ही, परंतु उनकी मन में कभी अभिमान नहीं था कि मैं एक बहुत बड़ा राजा हूं, मेरे पास इतनी समृद्धि है, इतने नौकर चाकर हैं। बहुत विनम्र रहते थे। भगवान भी कहे हैं कि जिनके पास जन्म ऐश्वर्य श्रुता श्री ये होने पर भी उनका अंदर कोई अभिमान नहीं रहता है, ये समझना चाहिए उन पर मेरी कृपा है। छह चीजें, कभी कभी बल भी, अनुजाई भी, ये भी अभिमान बढ़ाता है, एक मत है। परंतु ये भगवत भक्त होने के कारण उनके मन में कोई अभिमान नहीं था, वो सदा नम्र सदाचार नम्रता का पालन करते थे, वा नम्र व्यवहार करते थे, सदाचार का पालन करते थे, और मन में उनकी एकांतिक भक्ति कृष्ण के प्रति थी। तो प्रतिदिन ये सोचते थे कि मुझे कब भगवान के दर्शन होगा। ये शायद मैं गलत बोला कि ये द्वापर जी कथा है, जब भगवान श्री कृष्ण द्वारका में थे उस समय घटना घटी। तो उस प्रकार एक ब्राह्मण था जिसका नाम था श्रुतदेव। उसकी भी ऐसे हालत है कि रोज की भोजन जुटाने के लिए उनको बाहर जाना पड़ता है भिक्षा करने के लिए, परंतु साढ़ग्राम की पूजा बहुत श्रद्धा से करता था, बहुत प्रेम से, और प्रतिदिन ये दोनों राजा बहुड़ास्वर और ये श्रुतदेव ये दोनों ही रोज सवेरे होते ही सोचते थे कब भगवान के दर्शन होगा, हम द्वारका चल जाए वहां भगवान को दर्शन करके आ जाए, ऐसा सोचते थे। भगवान तो अंतर जानिए, तो उनकी दोनों की मनोभाव को जानते हैं। तो दारुक को आदेश दिए रथ लेके आओ, और जितनी बड़े बड़े सब मुनि ऋषियों थे सबको निमंत्रित किए। देवर असित सुखदेव को समर्पित है, सब ऋषियों के साथ भगवान ऐसे विराजमान हो रहे थे मानो सितारों के साथ चंद्रमा जैसे। बहुत शोभा, जहां जहां जाते थे लोग बड़े श्रद्धा के साथ उनको स्वागत करते। जब जनकपुर में पहुंच गए, भगवान अपने शंख बजाए और ये दोनों को पता चल गया, और दोनों आतुरता से दौड़ करके आए, और पहले भगवान को देख करके हाथ उठा करके दोनों ही चरण में गिर पड़े, और ये दोनों भक्त भगवान को स्वागत करने के लिए, मुनि ऋषि को स्वागत करने के लिए दोनों हाथ पकड़ लिए, प्रभु चलिए मेरे साथ चलिए, ये करें नहीं मेरे साथ। तो भगवान दोनों की व्याकुलता को देख करके दो रूप में अपने को विस्तार किए, और किसी को पता नहीं चला, और मुनि ऋषियों की मंडली को भी इसी प्रकार दो रूप विस्तार किए। तो श्रुतदेव बहुड़ासु तो बड़ा धनी था राजा ने, तो बहुत धन भाव से स्वागत किया, इतर गुलाल सुगंधित पुष्पमाला और बैठने के लिए बहुत सुंदर आसन दिए, और खाने पीने के लिए बहुत सुस्वादु भोजन का व्यवस्था की। और जब भगवान मुनि ऋषियों के साथ इस प्रकार आतिथ्य स्वीकार किए, उसके बाद राजा के मन में इतना प्रेम उत्पन्न हुआ, भगवान के चरण को लेकर के सहलाने लगा अपने जंघा पर रख करके। तो भगवान से बहुड़ासु की सेवा भावना को देख करके उनको धन्यवाद दिए और कुछ उपदेश भी दिए। फिर ये कैसे श्रुतदेव ने किस प्रकार स्वागत किया, गरीब था, पत्नी बच्चों के साथ पहले गए और सब मुनि ऋषियों के चरण को प्रक्षालन करने लगे पानी से और बैठने के लिए कूस घास के आसन जो था कुछ पत्ते थोड़े थे तुलसी के पत्ते कमल के पुष्प सुगंधित पुष्प और पीने के लिए कुछ पानी और कुछ नहीं था उनके पास और उनके आंख से भक्ति और प्रेम के उद्रेक होने से उनका आंख से इतनी आंसुओं की धारा बहती थी हाँ भगवान उनके भाव देखते थे और गदगद वाणी से भगवान की स्तुति करने लगा और इस प्रकार कह रहा था कि हम तो घर गृहस्थ में अंधक रूप में पड़े हुए हैं लेकिन हमारे कितने बड़े सौभाग्य हैं आज ऐसे तीर्थों को भी पावन करने वाले इनको कहते तीर्थ पदम तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि सो अंतस्तेन गदावृता भगवत विधा भगवता तीर्थ भूता स्वयं कहते तीर्थ सिर्फ ये जो मुनि ऋषियों ने आज पहुंच करके मेरे घर को आज तीर्थ बना दिए पावन कर दिए इतनी गदगद स्वर से बोल रहे थे आंख से आंसू भरा हुआ था तो भगवान उनकी एक एक शब्द को सुन रहे थे बहुत ध्यान पूर्वक यही है उत्तम श्लोक वार्तया तो सत्कार करने के बाद फिर भगवान श्री कृष्ण उस बहुड़ा सुख को श्रुतदेव को इस प्रकार उपदेश दिए कि मुझसे अधिक सेवा किसकी होना चाहिए मद भक्तम अध्य धिकम मुनि ऋषियों को तो ऐसे अनेक कथा है कि अतिथि सत्कार करने के लिए चैतन्य महाप्रभु के पिताजी जगन्नाथ मिश्र जब तीर्थिक ब्राह्मण आया था तो किस प्रकार स्वागत किए भोजन कराने के लिए उनको कितना निमाय ने तकलीफ दिया परंतु सारी परीक्षा से उत्तीर्ण हुए जगन्नाथ मिश्र विश्व रूप की तरफ फिर आखिरी निवेदन की तीन तीन बार जुटा कर दी यह है अतिथि सत्कार की बात तो भागवत में ये दी गई है कि यदि अतिथि आता है उसको हम नजर नहीं डालते हैं व प्रसन्न नेत्र में नहीं देखते हैं वो कहते हैं उनका आंख उल्लू जैसे है तो सार्वभौम प्रभु शायद एक बार बता रहे थे कहते हाँ इसलिए तो हम टीवी के पास बैठ जाते हैं कि हम देखेंगे नहीं उनको और फिर अपराध नहीं होगा परंतु ये अतिथि सत्कार करने के जो भाव वो कैसे था यम अनंत्रेन दर्शा आतिथ्येन दिज मैथिल्य श्रुतदेव जुगपत संघतांजलि अतिथि सत्कार ऐसे ही करना चाहिए चरण में गिर करके फिर उठ करके हाथ जोड़ करके खड़े रहना चाहिए पहला ये एक मोड है गौर मान गए आप देखिए अतिथियों को कैसे सत्कार करते थे श्रील प्रभुपाद के पिताजी यहां तक चूहा के लिए भी उन्होंने भोजन रखते थे क्योंकि ये भी अतिथि है उनको कोई बुलाते हैं क्या चूहा के लिए भी उन्हें रख देते थे कि जैसे प्रजा होते हैं ना पशु पक्षी सब भी प्रजा है केवल मनुष्य प्रजा नहीं होता सिटीजन और पहला यदि कोई आस पास में कोई भूखा है तो गोलमंद जाकर के पहले जोर जोर से पुकारते थे कोई तो भूखा नहीं है और उन सबको भोजन देने के बाद फिर जाकर के भोजन करते थे और प्रभुपाद देखते थे कि उनमें से कुछ ऐसे हैं जिनके आचरण अच्छे नहीं है कुछ हुक्का पीते हैं बीड़ी फूंकते हैं है ना कीर्तन में बैठ जाते हैं लेकिन पहला कि बीड़ी चाहिए बा चलो चाहिए फिर थोड़ा कीर्तन करते फिर मुंह जब सूख जाते फिर एक बीड़ी पी लो तो ऐसे कुछ कुछ साधु भी होते हैं परंतु एक गृहस्थ को खास करके किस प्रकार सत्कार करना चाहिए, सोचना चाहिए कि भगवान ने हमारे ऊपर ये जिम्मेदारी छोड़े तीन आश्रम को संभालने के लिए। इसलिए भगवत गीता में भगवान कहते हैं, देव दीज गुरु प्रज्ञा पूजनम शौच आर्जवम ब्रह्मचर्य अहिंसांच शरीर तप उच्यते। शरीर की तपस्या ये है कि हम पूजन करना चाहिए, किसकी? देव दीज गुरु और प्रज्ञा। प्रभुपाद कहते हैं यहां पर भगवान तपस्या की भेद बताते हैं कि सर्वप्रथम में शारीरिक तपस्या का वर्णन करते हैं। मनुष्य को चाहिए कि वह ईश्वर या देव योग्य ब्राह्मण गुरु तथा माता पिता जैसे गुरुजन या वैदिक ज्ञान में पारंगत व्यक्ति को प्रणाम करे या प्रणाम करना सीखे। इन सबका समुचित आदर करना चाहिए। और उसके विपरीत असुर लोग किस प्रकार करते हैं? राजसिक लोग वो कहते सत्कार मान पूजार्थम तपदंभे न चैवजत क्रियते तदिहं प्रप्तं राजसं चरम अद्रुपम। तो कभी कभी तपस्या इसलिए की जाती है कि लोग आकर्षित हो तथा उनसे सत्कार सम्मान तथा पूजा मिल सके। रजोगुणी लोग अपने अधीनस्थों से पूजा करवाते हैं और उनसे चरण धुलाकर धन चढ़वाते हैं। तपोदंभे। तो इस प्रकार की भी कुछ समाज में लोग हैं जो पूजा इसलिए लेते हैं कि लोग मेरे अधीन में रहे और मुझे कुछ चढ़वा दें। परंतु यह हर एक भक्तों के लिए यह अनिवार्य है कि पूजन अतिथियों की सेवा करना और विशेष करके गृहस्थ सन्यासी के पास आज तो बड़े बड़े सब आश्रम बन गए, लेकिन पहले तो कुछ नहीं होता था। जैसे वशिष्ठ थे उनके पास तो एक गाय था, वो विश्वामित्र को अच्छे से स्वागत किए थे, उनके पास नहीं था कुछ। फिर भी विश्वामित्र सोचा, अरे मैं राजा हूं, मेरे पास ही गाय रहना चाहिए। देखिए कैसे उल्टा बुद्धि। ऐसे तो मुनि ऋषियों से सेवा नहीं लेना चाहिए राजा होकर के, लेगी और कितना बुरी परिणाम हुआ। हाँ जमदग्नि उनके पास नहीं था, वो एक ही गाय था, ब्राह्मण थे, फिर भी राजा को सहस्रबाहु अर्जुन को कितनी अच्छे से सत्कार की, खान पान सोने के लिए अच्छे अच्छे तकिया दिए, डनलॉप बेड भी दे दिए, फाइव स्टार होटल में इतना भी सुस्वाद भोजन नहीं मिलता है, इतना वो अरेंजमेंट की, फिर भी इतना वो दम्भी था। अरे ये कैसे कर दिया इतना? तो पता चला उनके पास एक गाय है, कामधेनु गाय। कहते नहीं नहीं दे दो मुझे, और बलपूर्वक उनसे छीन ले, जैसे विश्वामित्र ने वशिष्ठ से नंदिनी छीन। तो ऐसे ही कलिजुग की दशा है, और कलिजुग जब आ गया है, अब देखो परीक्षित महाराज हालांकि राजा है, लेकिन कलि के प्रभाव होने के कारण वो श्रमिक मन के आश्रम में जाकर कहा कि अरे ये अतिथि को सत्कार करना नहीं जानता है, ये आंख बंद करके ये ढोंग कर रहा है, देखो मुझे पानी ग्लास के लिए भी नहीं पूछ रहा है। कलिजुग चढ़ गया कि कभी ब्राह्मण से वैष्णव से सेवा लेने के लिए चाह नहीं करना चाहिए, खासकर गृहस्थ को। ये भयंकर अपराध है, और ये इसलिए ये भागवतम से हमको शिक्षा मिला है, परीक्षित महाराज को साथ मिला। हालांकि कलि भी इसके अंदर प्रवेश कर गया, श्रृंगी के अंदर। किस प्रकार? ब्राह्मण को सहन करना चाहिए, फिर उनको साथ दे। ब्राह्मण यदि गृहस्थ है उसको भी सहन करना चाहिए। जैसे परशुराम जामदग्नि कहे ये अच्छा नहीं किया बेटा, तुम क्रोध करके, हालांकि वो अन्याय किए हैं, फिर भी ये हमारे अतिथि हैं, परंतु इतनी क्रोध करके गर्भ में रहे हुए संतान को मारना, ढूंढ ढूंढ करके मारे, नहीं, गर्भ से जो निकलता था तब मारते थे, गर्भ से नहीं मारे। तो फिर इसकी परिणाम क्या हुआ? हाँ, परशुराम अपने मां के गले भी काट दिए थे, है ना। प्रभुपाद पापड़ जी में लिखते हैं, चाहे जमदाग्नि क्यों ना हो, परशुराम क्यों ना हो, सहस्रबाहु अर्जुन क्यों ना हो, सबको अपने अपने कर्म की फल भुगतना पड़ता है। ट्रीटमेंट है, आप पर्वत में पढ़ सकते हैं नमाज की शायद कौन सा अध्याय, परशुराम का 14 की 15 अध्याय है। स्टेटमेंट देखें, यहां तक कि भगवान की अवतार सत्यावेश अवतार भी कर्म के फल लेना पड़ता है। तो लेसन है कि सद्धर्म की पालन, सदाचार की पालन अपने अपने अधिकार के अनुसार करना चाहिए। तो यहां जो विशेष बात कश्यप जी शिक्षा दे रहे हैं, एक गृहस्थ को कभी भी घर में आए हुए अतिथि को निराश करके आपस नहीं भेजना चाहिए। कुछ ना कर पाए कम से कम उनको देख करके खड़े हो जाना चाहिए और हाथ जोड़ करके उनसे प्रार्थना करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए, इस प्रकार अतिथि सत्कार करना चाहिए। तो कुछ इस प्रकार के शंकाएं कर रहे हैं, जिस प्रकार अर्जुन की मृणाल शरीर को देख करके भीमसेन ना सॉरी युधिष्ठिर महाराज है ना पूछ रहे थे, क्या हो गया तुम्हारा, अर्जुन को पूछे ना बहुत सारे। तो इसी प्रकार मनोभावना को यदि नहीं पढ़ पाते हैं तो कम से कम प्रश्न करो, पूछो जिज्ञासु से उत्तम, तो फिर आप जान पाओगे इनका अंदर मनोभाव क्या है। तो इसी प्रकार उनकी फीलिंग के अनुसार हमको डीलिंग करना चाहिए। हरे कृष्णा। की जय श्रील प्रभुपाद की जय, संवेद भक्त वृंद की जय, निदाय गौर हरि प्रेमानंदे।